एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो अपने समय के एक बहुत ही चमकदार सितारे थे, डेसिडेरियस इरास्मस रॉटरडैमस। ये वो दौर था, आप मानिए, लगभग 1466 से 1536 के आसपास का। यूरोप काफी बदल रहा था।
बिल्कुल, इरास्मस वो डच थे, रॉटरडैम में पैदा हुए, पर उनका दायरा किसी एक देश तक सीमित नहीं था, है ना?
हाँ, बिल्कुल नहीं।
वो तो असल में जिसे पत्रों का गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ लेटर्स कहते हैं, उसके नागरिक थे। मतलब उन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड, इटली,
पवित्र रोमन साम्राज्य, स्विट्जरलैंड,
हाँ, कई जगहों पर पढ़ाया। एक तरह से सच्चे यूरोपीय बुद्धिजीवी।
और उन्हें एक बड़ा खिताब मिला, मानवतावाद का राजकुमार।
हाँ, प्रिंस ऑफ द ह्यूमनिस्ट्स। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनके काम, उनकी सोच, सबका निचोड़ था।
तो आज हम यही कोशिश करेंगे, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर, कि इरास्मस कौन थे, उनके विचार क्या थे और आज भी वो क्यों मायने रखते हैं।
हाँ, हमारा इरादा यही है कि उनके जीवन और सोच की उन परतों को खोलें जिन्होंने न सिर्फ उस जमाने को बल्कि आने वाले वक्त को भी काफी गहराई से छुआ। वो थे तो ईसाई, पर प्राचीन ज्ञान और अपनी आस्था के बीच जैसे एक पुल बना रहे थे।
चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं उस माहौल से जिसमें इरास्मस रह रहे थे। कैसा था वो वक्त?
वो तो पश्चिमी इतिहास का एक बहुत ही, कह सकते हैं, तूफानी दौर था। एक तरफ तो उत्तरी पुनर्जागरण चल रहा था।
हाँ, नॉर्दर्न रेनेसा,
जिसमें कला, साहित्य, ज्ञान, सब कुछ जैसे दोबारा जिंदा हो रहा था। और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट सुधार की आहट सुनाई दे रही थी।
वो मार्टिन लूथर वाला,
हाँ, जो चर्च की सत्ता को सीधी चुनौती देने वाला था। तो इरास्मस बिल्कुल इन दो बड़ी लहरों के संगम पर खड़े थे।
और आपने कहा मानवतावाद, ह्यूमनिज्म की भी हवा थी, ये क्या चीज थी असल में?
देखिए, मानवतावाद एक बौद्धिक, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। उनका एक नारा था, एड फोंटेस।
एड फोंटेस मतलब
स्रोतों की ओर लौटो, यानी ग्रीस और रोम के जो पुराने ग्रंथ हैं उन्हें फिर से पढ़ो, समझो, ताकि पढ़ाई लिखाई, कल्चर सब में नई जान फूंकी जा सके।
ये मध्यकाल की सोच से हटकर इंसान और उसकी जो क्षमताएं हैं उस पर ध्यान देने की बात थी।
और प्रिंटिंग प्रेस भी तो आई गया था कुछ वक्त पहले।
हाँ, वो तो क्रांति ही थी। गुटेनबर्ग ने कुछ ही दशक पहले उसका आविष्कार किया था। उसने तो जैसे विचारों को पंख लगा दिए।
मतलब ज्ञान तेजी से फैलने लगा।
हाँ, अब ज्ञान सिर्फ मठों या राज दरबारों तक सीमित नहीं रहा, वो ज्यादा लोगों तक और ज्यादा तेजी से पहुंच रहा था। और इसी माहौल में जो कैथोलिक चर्च था उसके खिलाफ भी असंतोष बढ़ रहा था।
किस तरह का असंतोष?
उसकी बेहिसाब दौलत, राजनीति में दखल और कुछ आध्यात्मिक कमजोरियां, जैसे वो इंडल्जेंस बेचते थे ना?
हाँ, पाप माफी वाले पत्र।
बिल्कुल, उन सब की खूब आलोचना हो रही थी।
ओ बिल्कुल, उनके करीबी दोस्तों में एक तो थे अंग्रेज मानवतावादी थॉमस मोर,
वही यूटोपिया वाले।
हाँ भाई, दूसरी तरफ जर्मन सुधारक मार्टिन लूथर थे, जिनसे बाद में उनकी जबरदस्त वैचारिक टक्कर हुई और उन्हें पोप लियो 10वें और सम्राट चार्ल्स 5वें जैसे ताकतवर लोगों का सहारा भी मिला।
वो अपने लेखन से, कह सकते हैं, यूरोप के पहले इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल सेलिब्रिटी बन गए थे।
उनकी अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसी रही?
सुना है कुछ आसान नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पादरी और एक डॉक्टर की बेटी के नाजायज बेटे थे।
ओहो,
उस समाज में ये एक बहुत मुश्किल शुरुआत थी। और फिर छोटी उम्र में ही उनके माँ बाप गुजर गए, वो अनाथ हो गए,
लेकिन फिर भी उन्हें अच्छी शिक्षा मिली।
हाँ, किस्मत अच्छी थी कि उन्हें बेहतरीन तालीम मिली। खासकर एक समुदाय था, ब्रदरन ऑफ द कॉमन लाइफ।
ये कौन लोग थे?
ये लोग निजी तौर पर भक्ति और क्लासिकल, यानी ग्रीक और लैटिन साहित्य की पढ़ाई पर बहुत जोर देते थे। यहीं पर इरास्मस को इन पुरानी भाषाओं और साहित्य से गहरा लगाव हुआ, जो फिर जिंदगी भर रहा।
उन्हें पादरी भी बनाया गया था, है ना?
हाँ, 1492 में। लेकिन मठ की जो बंधनों वाली जिंदगी थी वो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आई। वो आजाद रहना चाहते थे, एक स्कॉलर की तरह।
तो उन्होंने छोड़ दिया मठ।
उन्हें जल्दी ही मठ के नियमों से छूट मिल गई और वो यूरोप घूमने निकल पड़े ज्ञान की तलाश में। उनकी ये यात्राएं उनके लिए बहुत बहुत जरूरी साबित हुईं, जैसे इंग्लैंड में उनकी दोस्ती हुई थॉमस मोर और जॉन कॉलेट जैसे लोगों से। इससे बाइबल को मानवतावादी नजरिए से पढ़ने में उनकी दिलचस्पी और बढ़ी। फिर वो इटली गए, वहां उन्होंने अपनी ग्रीक भाषा को और पक्का किया।
और ये जो उनका फैसला था कि वो आजाद रहेंगे, किसी यूनिवर्सिटी या राजा से बंधेंगे नहीं, ये अहम था।
बेहद अहम। इसी आज़ादी की वजह से वो बिना किसी दबाव के समाज और चर्च के कमियों पर लिख सकें। उन्हें अलग अलग लोग, संरक्षक, पेट्रन्स मदद करते थे। इसी आज़ादी ने उन्हें उस मुश्किल वक्त में एक खास जगह दी, खासकर जब 1517 में प्रोटेस्टेंट सुधार का जैसे धमाका हुआ, वो उनकी बाकी की जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया।
चलिए अब जरा उनके मूल विचारों पर आते हैं। इरास्मस की सोच का कह सकते हैं केंद्र बिंदु क्या था?
इरास्मस के विचारों का दिल है ईसाई मानवतावाद,
क्रिश्चियन ह्यूमैनिज्म।
हाँ, मतलब ये मानना कि जो ग्रीस और रोम का प्राचीन ज्ञान है, उनकी भाषा, उनका साहित्य, उनका दर्शन, उसे ईसाई धर्म की आस्था के साथ मिलाया जा सकता है और इन दोनों को मिलाकर एक ज्यादा बेहतर, नैतिक और समझदार समाज बनाया जा सकता है।
यानी क्लासिकल विवेक और ईसाई प्यार दोनों साथ साथ।
बिल्कुल, यही उनका मानना था। वो मानते थे कि ये दोनों मिलकर इंसानियत को ऊपर उठा सकते हैं।
उन्होंने एक फिलोसोफिया क्रिस्टी यानी ईसा के दर्शन की भी बात की थी, ये क्या था?
हाँ, फिलोसोफिया क्रिस्टी, इसका मतलब था कि ईसाई धर्म का असली सार जो है वो मुश्किल धर्म सिद्धांतों या बाहरी पूजा पाठ रस्म रिवाजों में नहीं है।
तो फिर किसमें है?
वो है ईसा मसीह की शिक्षाओं के मुताबिक एक सादा, नैतिक और प्रेम से भरा जीवन जीने में। उन्होंने जोर दिया दिल की सच्चाई पर, अंदरूनी आध्यात्मिकता पर, और जो बाहरी चीजें थीं जैसे तीर्थयात्राएं करना, संतों के अवशेषों की पूजा करना,
हाँ, उन सब की उन्होंने आलोचना की।
बिल्कुल, एक तरह से ये धर्म को ज्यादा सरल और व्यक्तिगत बनाने की कोशिश थी।
और एक चीज पर उनका बहुत जोर था, ग्रंथों की सटीकता।
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो पार्ट्य सटीकता, टेक्सचुअल एक्यूरेसी और मूल स्रोतों तक वापस जाने के बड़े समर्थक थे।
मतलब ओरिजिनल टेक्स्ट।
हाँ बिल्कुल, उन्होंने मानवतावादी भाषा शास्त्र जिसे फिरोलॉजी कहते हैं, मतलब शब्दों और ग्रंथों के इतिहास और अर्थ को बारीकी से समझना, उसके तरीकों को बाइबल पर, खासकर नए नियम यानी न्यू टेस्टमेंट पर लागू किया।
ये उस वक्त के लिए बड़ी बात रही होगी।
अरे क्रांतिकारी बात थी, क्योंकि सदियों से सेंट जेरोम का किया हुआ लैटिन अनुवाद जिसे वल्गेट कहते हैं, उसी को सब मानते थे। उस पर सवाल उठाना ये बड़ी हिम्मत का काम था।
और इसी काम ने आगे चलकर
धर्म सुधार और जो आज मॉडर्न बाइबल स्टडीज होती हैं, उसकी नींव रखी।
वो व्यंग, सटायर का भी इस्तेमाल करते थे, है ना?
अरे उस्ताद थे वो इसके, खासकर उनकी एक किताब है मूर्खता की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ फॉली।
हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में।
उसमें उन्होंने समाज, चर्च, बड़े बड़े विद्वान, सबकी कमजोरियों, उनके पाखंड, उनकी मूर्खताओं पर इतने मजेदार लेकिन तीखे ढंग से लिखा है। व्यंग उनके लिए सिर्फ हंसी मजाक का जरिया नहीं था, वो सुधार का एक हथियार था।
और शांति को लेकर उनके विचार भी काफी मजबूत थे।
बिल्कुल, वो पक्के शांतिवादी थे। उन्होंने युद्ध की बेवकूफी और उसकी क्रूरता पर बहुत जोरदार तरीके से लिखा है। उनका मानना था कि सबसे खराब शांति भी सबसे जायज लगने वाले युद्ध से बेहतर होती है।
ये उस जमाने में कहना जब राजा महाराजा लगातार लड़ते रहते थे।
हाँ, बहुत बड़ी बात थी।
और आखिर में वो स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल वाला मुद्दा, वो लूथर के साथ उनके मतभेद का बड़ा कारण बना।
हाँ, ये उनके और लूथर के बीच की सबसे गहरी दार्शनिक खाई थी। लूथर का मानना था कि इंसान गुनाह के वजह से इतना गिर गया है कि उसमें खुद से अच्छाई चुनने की ताकत ही नहीं बची, वो पूरी तरह ईश्वर की कृपा पर निर्भर है।
और इरास्मस?
इरास्मस ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, नहीं, इंसान में अब भी स्वतंत्र इच्छा बची हुई है, वो ईश्वर की मदद से, उसकी कृपा के साथ मिलकर सही रास्ता चुन सकता है। ये बहस उस वक्त बहुत बहुत गर्माई थी।
तो संक्षेप में कहें तो इरास्मस का जोर था विवेक, नैतिकता, अंदरूनी आस्था, मूल ग्रंथ, शांति और इंसान की गरिमा पर।
बिल्कुल सही, यही उनके विचारों का सार था।
उनके कुछ खास कामों का जिक्र भी कर लेते हैं। कौन सी किताबें हैं जो सबसे ज्यादा जानी जाती हैं?
एक तो उनकी बेहद मशहूर किताब है अडाजिया। अडाजिया ये 1500 में पहली बार छपी और फिर वो से जिंदगी भर और बढ़ाते रहे, उसमें नई चीजें जोड़ते रहे।
ये ठीक है, असल में
इसमें हजारों ग्रीक और लैटिन कहावतें और मुहावरे थे, और साथ में इरास्मस ने उनकी व्याख्या भी लिखी थी। ये किताब जबरदस्त हिट हुई, इसने पूरे यूरोप में इरास्मस को एक महान विद्वान के तौर पर मशहूर कर दिया। समझिए, उस जमाने का एक तरह का ज्ञानकोश जैसा बन गया था ये।
और उनकी सबसे तीखी और शायद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब,
वो है मुरियेई एनकोमियम यानी मूर्खता की प्रशंसा, द प्रेज ऑफ फॉली, 1511 में आई थी।
हाँ, इसका जिक्र पहले भी आया।
इसमें देवी मूर्खता खुद अपनी तारीफ में एक भाषण देती है, और इस बहाने समाज के हर वर्ग, खासकर जो घमंडी विद्वान थे, भ्रष्ट पादरी थे, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उन सब की जमकर खबर लेती है। ये आज भी उतनी ही मज़ेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली किताब है।
लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा अकेडमिक स्कॉलरली काम कुछ और माना जाता है।
हाँ, विद्वानों की नज़र में देखें तो उनका सबसे बड़ा योगदान है नोवम इंस्ट्रूमेंटम ओमने, नोवम इंस्ट्रूमेंटम ओमने, जो 1516 में आया।
ये क्या था?
ये नए नियम यानी न्यू टेस्टमेंट का पहला छपा हुआ संस्करण था जो उसकी मूल ग्रीक भाषा में था, और साथ में इरास्मस का अपना नया ज्यादा सटीक लैटिन अनुवाद भी दिया गया था।
तो इसने पुराने लैटिन अनुवाद को चुनौती दी।
हाँ, इसने सदियों से चले आ रहे हैं सेंट जरोम के लैटिन वल्गेट अनुवाद के एक छत्र राज को सीधी चुनौती दी। ये बाइबल की पढ़ाई के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। लूथर जैसे सुधारकों ने अपने जर्मन अनुवाद के लिए इसी ग्रीक टेक्स्ट का इस्तेमाल किया।
अच्छा, तो इरास्मस ने अनजाने में ही सही सुधार आंदोलन को एक बहुत बड़ा बौद्धिक हथियार दे दिया था,
कह सकते हैं। बिल्कुल,
इरास्मस की तुलना अक्सर उनके समय के दूसरे बड़े विचारकों से होती है, खासकर मार्टिन लूथर से। दोनों में मुख्य फर्क क्या देखते हैं आप?
देखिए, लूथर जो थे वो एक क्रांतिकारी थे। उन्हें लगता था कि कैथोलिक चर्च इतना बिगड़ चुका है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता, उससे अलग होना ही पड़ेगा।
वो सीधी टक्कर लेने वाले थे।
हाँ, जबकि इरास्मस एक सुधारक थे। वो चर्च की आलोचना तो करते थे, पर वो उसे अंदर से ही ठीक करना चाहते थे, उसकी एकता को बनाए रखना चाहते थे, वो टकराव से बचना चाहते थे, बातचीत से, समझदारी से रास्ता निकालना चाहते थे।
और वो स्वतंत्र इच्छा वाली बहस भी इसी फर्क को दिखाती है।
बिल्कुल, वो उनके बुनियादी नजरिए के फर्क को उजागर करती है।
और थॉमस मोर, वो तो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे।
हाँ, मोर भी मानवतावादी थे और इरास्मस के बहुत गहरे दोस्त, लेकिन जब धर्म सुधार का तूफान आया तो मोर कट्टर कैथोलिक बने रहे और अपने विश्वास के लिए उन्होंने जान दे दी, शहीद हो गए।
जबकि इरास्मस ने बीच का रास्ता खोजने की कोशिश की।
हाँ, जिसके लिए उन्हें दोनों तरफ से आलोचना भी झेलनी पड़ी।
और मैकियावेली से अगर तुलना करें तो?
मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में राजनीति में यथार्थवाद पर जोर दिया। सत्ता कैसे हासिल की जाए, कैसे बनाई रखी जाए, भले ही उसके लिए नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़े।
हाँ, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स।
बिल्कुल, इरास्मस ने इसके ठीक उलट एक किताब लिखी ईसाई राजकुमार की शिक्षा, द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस। इसमें उन्होंने राजाओं के लिए ईसाई नीति, नैतिकता, न्याय और अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखने की बात की।
तो एक बता रहा था कि सत्ता क्या है, दूसरा बता रहा था कि सत्ता को कैसा होना चाहिए।
हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने।
तो कुल मिलाकर देखें तो इरास्मस की विरासत क्या रही, उन्हें आज कैसे याद किया जाता है?
उनकी विरासत थोड़ी कह सकते हैं मिली जुली या जटिल है। जीते जी तो वो बहुत मशहूर थे, यूरोप भर में उनका नाम था, पर उनके मरने के बाद कैथोलिक चर्च ने उनकी कई किताबों को बैन कर दिया, निषिद्ध पुस्तकों की सूची में डाल दिया।
क्यों?
क्योंकि उन पर ये इल्जाम लगा कि अंडा तो इरास्मस ने ही दिया था, जिससे बाद में लूथर ने सेया।
अच्छा, कि सुधार आंदोलन की जमीन उन्होंने ही तैयार की थी।
हाँ, ये बात एक तरह से उनके असर को तो मानती है, पर उन्हें उस बंटवारे का जिम्मेदार भी ठहराती है जिससे वो खुद बचना चाहते थे।
लेकिन उनका असर किसी एक पंथ या विचारधारा तक तो सीमित नहीं रहा ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कोई नया चर्च या कोई नया सिद्धांत तो स्थापित नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक सोच को, एक भावना को बढ़ावा दिया, आलोचनात्मक तरीके से सोचने की, सहनशील होने की, आपस में बातचीत करने की और पढ़े लिखे ढंग से धर्म को समझने की।
और इसी भावना ने आगे चलकर
ज्ञानोदय यानी एनलाइटमेंट के जो विचारक थे उनको रास्ता दिखाया, उनको प्रभावित किया।
तो आज उन्हें किस रूप में देखा जाता है?
आज इरास्मस को उदारवाद, विश्व बंधुत्व यानी कॉस्मोपोलिटिज्म,
मतलब ये विचार कि हम सब एक दुनिया के नागरिक हैं।
हाँ, और सर्वधर्म संभाव यानी इक्यूमिनिज्म, अलग अलग ईसाई पंथों के बीच एकता की कोशिश, इन सबके एक शुरुआती पैरोकार के तौर पर देखा जाता है।
वो यूरोपियन यूनियन का जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, इरास्मस प्रोग्राम, वो भी तो उन्हीं के नाम पर है।
हाँ, बिल्कुल, उसका नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, क्योंकि वो ज्ञान और संस्कृति के जरिए पूरे यूरोप को जोड़ने की बात करते थे।
यानी उनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
मुझे तो लगता है शायद पहले से भी ज्यादा। जिस तरह वो कट्टरपंथ की जगह तर्क और बातचीत पर जोर देते थे, वो आज की जो हमारी बटी हुई दुनिया है उसमें बहुत जरूरी लगता है।
वो जैसे मध्ययुगीन सोच और आधुनिक आलोचनात्मक नजरिए के बीच या धार्मिक कट्टरता और सहिष्णुता के बीच एक पुल की तरह खड़े दिखाई देते हैं।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनकी सोच की झलक देते हैं। एक तो मुझे याद आ रहा है किताबों के बारे में।
हाँ, वो बहुत मशहूर है। जब मेरे पास थोड़े पैसे होते हैं तो मैं किताबें खरीदता हूँ, और अगर कुछ बच जाता है तो मैं खाना और कपड़े खरीदता हूँ।
कमाल है, ये उनके एक खत से है।
हाँ, और ये दिखाता है कि ज्ञान उनके लिए क्या मायने रखता था, सब कुछ। और एक कहावत जो उन्होंने बहुत लोकप्रिय बनाई, अंधों की नगरी में काना राजा होता है।
हाँ, ये उनकी किताब एडाजिया से है। इसका मतलब है कि जब चारों तरफ अज्ञान फैला हो तो थोड़ा सा ज्ञान भी बहुत बड़ा लगने लगता है। ये शायद सच्ची समझ और जो सतही जानकारी होती है उसके फर्क पर भी एक तरह की टिप्पणी है।
इरास्मस की शख्सियत में कुछ दिलचस्प कम जानी पहचानी बातें भी थीं।
हाँ, कई हैं, जैसे वो अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते थे, कुछ कुछ वहमी कह सकते हैं।
अच्छा।
उन्हें प्लेग से बहुत डर लगता था, जो जमाने में बहुत फैलता था। वो साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, जो उस वक्त के हिसाब से काफी अजीब बात थी।
लेकिन फिर भी वो काफी लंबा जिए।
हाँ, मजे की बात यह है कि इतनी चिंताओं के बावजूद वो जमाने में करीब 70 साल जिए, जब औसत उम्र बहुत कम हुआ करती थी।
और ये भी सुना है कि वो चिट्ठियों में खूब शिकायतें करते थे।
अरे हाँ, उनके 3000 से ज्यादा खत आज भी मौजूद हैं।
3000?
हाँ, और उनमें वो यात्रा की मुश्किलों, खराब सरायों, मठ के लोगों की अज्ञानता और यहाँ तक कि खराब शराब और बियर की भी शिकायत करते मिल जाते हैं। ये खत उस जमाने की जिंदगी और उनके अपने विचारों का एक अनमोल खजाना है।
और उनकी याददाश्त भी कमाल की थी,
गजब की। वो क्लासिकल साहित्य के बड़े बड़े हिस्से जुबानी कंठस्थ सुना सकते थे।
वाह। हालांकि इरास्मस का इतना सम्मान था, दुनिया भर में नाम था, पर उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा होगा।
हाँ, जाहिर है, और दोनों तरफ से। जब धर्म सुधार का आंदोलन तेज हुआ तो उन पर दोनों खेमों से दबाव पड़ा कि भाई आपके दाह हैं, किसी एक का पक्ष तो लीजिए। जो कैथोलिक कट्टरपंथी थे उनको लगता था कि इरास्मस की जो बाइबल की आलोचना है और उनका जो व्यंग है वो चर्च की सत्ता को कमजोर कर रहा है और सुधारकों को हवा दे रहा है।
और सुधारकों को क्या शिकायत थी उनसे?
मार्टिन लूथर और जो दूसरे सुधारक थे उन्होंने इरास्मस को डरपोक कहा कि ये सच जानते हुए भी खुलकर हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। लूथर के साथ जो उनकी स्वतंत्र इच्छा पर बहस हुई, इसके बाद तो प्रोटेस्टेंट खेमे में उनकी छवि एक ऐसे ढुलमुल बुद्धिजीवी की बन गई जिसमें हिम्मत की कमी है।
तो दोनों तरफ से आलोचना हुई।
हाँ, कुछ आधुनिक आलोचक भी हैं, कुछ मानते हैं कि उनका जो ये बीच का रास्ता अपनाने का रोहिया था वो शायद उस तूफानी वक्त की जरूरत के हिसाब से थोड़ा कमजोर था, या शायद मौका परस्ती थी।
अच्छा।
कुछ ये भी कहते हैं कि उनका ये मानना कि सिर्फ शिक्षा से ही समाज की गहरी समस्याएं हल हो जाएंगी, ये थोड़ा ज्यादा ही आशावादी है, सतही था। इसके साथ ही स्रोतों में यह भी दर्ज है कि कुछ नारीवादी विद्वान महिलाओं पर उनके जो पारंपरिक विचार थे उनको नोट करते हैं, और कुछ उत्तर औपनिवेशिक आलोचक उनके यूरोप केंद्रित नजरिए को रेखांकित करते हैं। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि ये जो आलोचनाएं हैं ये स्रोतों में पाए गए विचार हैं जिन्हें हम सिर्फ यहाँ बता रहे हैं। हम इनका ना तो समर्थन कर रहे हैं न ही विरोध।
बिल्कुल। तो इरास्मस एक बेहद जटिल, प्रभावशाली और कहीं ना कहीं शायद एक दुखद शख्सियत भी थे। उनके बारे में सोचते हुए एक आखिरी सवाल या विचार मन में आता है। इरास्मस ने एक ऐसे वक्त में बीच का रास्ता, संवाद का रास्ता चुना, जब दुनिया लगभग चीख रही थी कि या तो इधर हो जाओ या उधर। आज भी हमारी दुनिया कई बार ऐसी ही बंटी हुई नजर आती है, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
तो क्या हम इरास्मस के इस प्रयास से, चाहे वो उस वक्त पूरी तरह कामयाब हुआ हो या नहीं, कुछ सीख सकते हैं कि कैसे कट्टरता और टकराव की बजाय तर्क, बातचीत और साझा जमीन तलाशने की कोशिश की जाए? ये एक सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले शायद सोच सकते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्तित्व, एक नए किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।